पंच परमेष्ठी का स्मरण करेंगे।
ओम को नमन ओंकार को नमन
अरिहंतो को नमन श्री सिद्धो को नमन
अरिहंतो को नमन श्री सिद्धो को नमन
ओम को नमन ओंकार को नमन
ओम को नमन ओंकार को नमन
आचार्यो को नमन
आचार्यों को नमन उपाध्यायों को नमन
ओम को नमन ओंकार को नमन
ओम को नमन ओंकार को नमन
सर्व साधु को नमन पंच परमेष्ठी नमन
सर्व साधु को नमन पंच परमेष्ठी नमन
ओम मंगलम ओंकार मंगलम
मंगलम ओंकार मंगलम
अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम
अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम
ओम मंगलम ओंकार मंगलम
ओम मंगलम ओंकार मंगलम
आचार्य मंगलम उपाध्याय मंगलम
आचार्य मंगलम उपाध्याय मंगलम
ओम मंगलम ओंकार मंगलम
ओम मंगलम ओंकार मंगलम
सर्व साधु मंगलम जिन धर्म मंगलम
सर्व साधु मंगलम जिन धर्म मंगलम
ओम उत्तम ओंकार उत्तम
ओम उत्तम ओंकार उत्तम
अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम
अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम
ओम उत्तम ओंकार उत्तम
ओम उत्तम ओंकार उत्तम
आचार्य उत्तम उपाध्याय उत्तम
आचार्य उत्तम उपाध्याय उत्तम
ओम उत्तम
ओंकार उत्तम
सर्व साधु उत्तम जिन धर्म उत्तम
सर्व साधु उत्तम जिन धर्म उत्तम
ओम शरण ओंकार शरण
ओम शरण ओंकार शरण
अरिहंत शरण सिद्ध प्रभु शरण
अरिहंत शरण सिद्ध प्रभु शरण
ओम शरण ओंकार शरण
ओम शरण ओंकार शरण
आचार्य शरण उपाध्याय शरण
आचार्य शरण उपाध्याय शरण
ओम शरण ओंकार शरण
ओम शरण ओंकार शरण
सर्व साधु शरण जिन धर्म शरण
सर्व साधु शरण जिन धर्म शरण
ओम मंगलम ओंकार मंगलम
ओम मंगलम ओंकार मंगलम
विद्यागुरु मंगलम गुरुवाद्यमंगलम
विद्यागुरु मंगलम गुरुवाद्यमंगलम
बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री ईश्वर क्षमा सागर जी महाराज की जय। हम सभी लोगों का महान सौभाग्य कि हम सभी को यह मनुष्य पर्याय मिली। हम सभी को यह ज्ञात नहीं है कि यह हमारे अनंतों अनंतों भावों के संचित पुण्य का फल जिसके फलस्वरूप हमें यह मनुष्य पर्याय मिली और मनुष्य पर्याय में हमें यह वाणी जिह्वा इंद्रिय प्राप्त हुई जिसके माध्यम से हम वाणी संयम के द्वारा अपने साथ साथ और अनेक जीवों का भी हम कल्याण कर सकते हैं। इस संसार में अनंतानंत एक ही जीव है, परंतु उनके पास बाप शक्ति का अभाव है और जो द्वंदी से लेकर के चारंगी तक के जीव हैं, जो कीड़े मकोड़े आदि हैं, उनके पास चूंकि बोलने की शक्ति तो विद्यमान है, परंतु अभिव्यक्ति का माध्यम उनके पास नहीं है, तो वह भी अपनी जिंदगी का सदुपयोग नहीं कर पाते। और जो पक्षी आजीविका करते हैं, तो उनके पास बात शक्ति भी है, अभिव्यक्ति का माध्यम भी है, परंतु उनके द्वारा कहे गए शब्दों के अर्थबोध को हम नहीं समझ पाते। परंतु हम सभी का सौभाग्य कि हमारे पास बात शक्ति भी है, अभिव्यक्ति का माध्यम भी है, शब्द भी है, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर के विचारों को एक से लेकर के अनेक व्यक्तियों पर तक पहुंचा देते हैं और अपने अच्छे विचारों के माध्यम से हम उसका भी कल्याण कर लेते हैं और उसको भी हम गदगद या प्रसन्न कर लेते हैं। और यदि हमारी वाणी में चूक हो जाती है तो निश्चित रूप से हम सामने वाले व्यक्ति को दुखी भी कर देते हैं। तो यह हमें जो कि वाणी या वचन शैली प्राप्त हुई है, तो यह तो हमारे ऊपर है कि हम इसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। और कहा भी है कि संसार रूपी कड़वे वृक्ष में दो ही फल जो कि अमृत के समान कहे गए हैं, एक तो है सुभाषित संभाषण और दूसरा है सुसंगति का अपने जीवन में प्राप्त करना। बंधुओं, यदि हम चाहें तो इसी वाणी के माध्यम से लाखों लाखों जीवों को संहार से भी बचा सकते हैं, और यदि हम चाहें तो इसी वाणी के माध्यम से हम लाखों लाखों जीवों को भी मौत के घाट पर उतार सकते हैं। और ऐसा अनेकों बार इसी संसार में घटित हो चुका है। प्रथमानियों के ग्रंथ तो इन्हीं कथाओं से भरे पड़े हुए हैं। महाभारत के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि द्रौपदी जो कि थोड़ी स्खलित हो गई, उसने अपने वचनों का दुरुपयोग कर दिया। जब वह दुर्योधन पानी से भरे हुए उस जलाशय में गिर जाता है, तो द्रौपदी खड़ी खड़ी हंसती है और उसने कह दिया था कि अंधों के बेटे अंधे ही तो होते हैं, इसलिए वो गया है। और यह शब्द उस दुर्योधन के कानों में पड़ गए और वह आग बबूला हो गया। द्रौपदी के उन शब्दों ने दुर्योधन के पूरे शरीर में आग का पान कर दिया और इन्हीं शब्दों को लेकर के वह महाभारत तैयार हो गया। महाभारत में एक ही कारण रहा है कि वह द्रौपदी के शब्द। इसलिए हम सभी लोगों को अपने द्वारा जो प्रवृत्ति होती है, हमें अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति पर ध्यान देना होगा, तभी कहीं जाकर के हम अपनी प्रवृत्तियों में सुधार कर पाएंगे। अंग्रेजी में एक शब्द आता है बाज, जिसका अर्थ होता है निगरानी करना, WATCH। तो यहाँ पर इसका बहुत अच्छा अर्थ निकाला है कि बात योर बैड, डब्ल्यू से लेंगे बैड, बात योर बैड, अपने शब्दों का निरीक्षण करो या अवलोकन करो। और इससे आएगा बात योर एक्शन, अपनी क्रिया का निरीक्षण करो। तीसरा यहाँ पर टी से लेंगे बात योर थॉट, अपने विचारों का निरीक्षण करो। और चौथा सी से यहाँ पर कैरेक्टर, बात योर कैरेक्टर, अपने चरित्र का निरीक्षण करो। और सबसे अंत में आता है एच, अर्थात एच से लिया है यहाँ पर हैबिट, बात योर हैबिट, अपनी आदत का निरीक्षण करो। और जब तक हम अपनी इन पांचों बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से वाणी का संयम जो कि सदाकाल से चला आ रहा है और कभी भी रोका नहीं जा सकता, और इसी वाणी के अध्ययन के कारण बहुत सी घटनाएं स्वतः घट जाती हैं। एक बार की बात, एक व्यक्ति जो कि बहुत अधिक पढ़ा लिखा था और जो ज्यादा पढ़े जाते हैं उनके द्वारा कोई अच्छा काम ना हो पाए, कोई अच्छा काम हो पाए, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, परंतु उनको अभिमान अहंकार बहुत अधिक हो जाता है, तो इसी प्रकार से यह व्यक्ति भी बहुत अधिक घमंड में फूला नहीं समाता था। उसकी शादी हुई और वह कुछ ही दिनों के बाद जब उसकी पत्नी की प्रथम विदाई हुई, उसको अपनी माँ के भेज दिया गया, तो यह व्यक्ति तीन या चार दिनों के बाद ही अपनी ससुराल उस पत्नी को लेकर चला जाता है। तो वहां पर जब उसने कहा कि मैं आज आया हूँ और कल ही पत्नी को लेकर के जाऊंगा, मैं एक भी दिन यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, तो उसकी सासू ने समझाया कि देखो बेटे, ऐसा कभी भी नहीं होता है, अभी उसको तीन चार दिन ही तो हुए हैं और गांव वाले क्या सोचेंगे ऐसा, और अभी तुम्हारे ससुर भी यहाँ पर नहीं है, मैं तो अभी बिल्कुल नहीं भेजूंगी, दो चार दिन और ठहर जाओ, जब लड़की के पिताजी आ जाएंगे तो मैं व्यवस्था आदि करके उसको तुम्हारे साथ भेज दूंगी। परंतु उसने कहा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं तो लेने आया हूँ और कल लेकर के भी जाऊंगा, तुम्हारी व्यवस्था में हो या ना हो इससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है, मैं कल ही लेकर के जाऊंगा। तो सासू को भी बहुत अधिक क्रोध आ जाता है और उसने कह दिया कि यदि ऐसा कुछ है तो आपको जो करना है चले जाओ, आप कर जा सकते हैं, परंतु मैं लड़की को तब तक नहीं भेजूंगी जब तक कि उसके पिताजी घर पर नहीं आ जाते, और मैं तो ये मानूंगी कि मेरी बेटी विधवा हो गई, तो चले जाओ, इससे कोई मतलब नहीं। तो उस लड़के ने भी कहा कि अगर ऐसा है तो तुमने अपनी बेटी को विधवा मान लिया है, तो निश्चित रूप से मैं तुम्हारी बेटी को विधवा करके ही दिखाऊंगा। उसने भी ठान लिया और वह तीर की भांति घर से बाहर निकलता है और जाकर के कुएं में जाता है और अपने प्राणों को अर्पण करता है। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि उस साधु को थोड़ा संयम जरूर रखना था, अगर वह भट कर रहा था तो उसको प्रेम से समझाना था, परंतु इसने अपने संयम को खो दिया और कह दिया कि मैं तो मानूंगी कि मेरी बेटी विधवा हो गई है। तो उस लड़के ने इन शब्दों को सुनकर के वास्तव में उसकी बेटी को विधवा बना दिया। तो यहाँ पर उसकी बेटी के विधवा बनने में सबसे बड़ा हाथ उस सासू के वाणी के असंयम का ही है, और निश्चित रूप से हमारे शब्दों का अच्छा या जो बुरा प्रभाव पड़ता है, सामने वाला व्यक्ति उससे हताहत हुए बिना नहीं रह सकता, हमारा ध्यान उस तरह नहीं जाता कि इसको कितनी अंदर तक चोट पहुंची है। किसी कवि ने कहा भी है, मीठे पानी में समय आ गया है, जीवन में आपने हम सभी को
बहुत अच्छा अच्छा उपदेश दिया। अब आप अंतिम समय भी हम सभी के कल्याण के लिए कुछ उपदेश के रूप में कहें तो कंफ्यूशियस ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपना मुख खोल दिया। सभी शिष्यों के सामने उन्होंने अपने मुख को खोल दिया और शिष्यों से पूछा कि तुम्हें मुख के अंदर क्या दिख रहा है। तो उन सभी शिष्यों ने कहा कि सर, आपके मुख के अंदर हमें एक जवान दिख रही है और रात एक भी नहीं दिख रही है। तो सर ने कहा बहुत अच्छा, और उन्होंने पूछा कि जीभ ही क्यों दिख रही है और दांत क्यों नहीं दिख रहे हैं, इसका रहस्य क्या आप लोगों को ज्ञात है। तो सभी के सभी शिष्य सोचने पर मजबूर हो गए, परंतु एक भी शिष्य उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। तो कंफ्यूशियस ने उन शिष्यों से कहा कि इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि जानते हो, जिह्वा दांतों से पहले आती है और अंत तक रहती है, और दांत क्योंकि बहुत बाद में आते हैं और पहले क्यों चले जाते हैं, इसका भी कारण है। क्योंकि दांत कठोर होकर करते हैं, इसलिए वह दांत पहले चले जाते हैं, और जिह्वा कोमल होती है, इसलिए वह जिह्वा शुरू में जन्म के साथ ही आ जाती है और मरण के समय तक वह हमारे साथ रहा करती है। इसलिए हम सभी लोगों को भी यदि यह जिह्वा प्राप्त हुई है, और मनुष्यों में भी हमने देखा है कि कई ऐसी प्राणी हैं जिनके पास जिह्वा भी है, अभिव्यक्ति का माध्यम भी है, शब्द भी है, परंतु वह गूंगे हैं, उनको बोलना नहीं आता। यह तो सब हमारे पुण्य का फल है कि हमें यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। इसलिए हम सभी लोगों को अपना पूरा का पूरा जीवन मधुवाणी में यदि हमारे शब्दों के माध्यम से ही सामने वाले को प्रसन्नता होती है तो उसमें हमारा क्या लग रहा है, कौन सा घाटा हमें हो रहा है, क्यों ना हम अच्छे ही शब्दों का प्रयोग करें। और निश्चित रूप से जब जब भी वाणी का असंयम होता है, जब भी हमारी यह जिह्वा स्खलित होती है, तो इसमें पांच कारण निमित्त बनते हैं। उसमें सबसे पहले क्रोध और भय, लोभ और हंसी मजाक, और अंत में आता है हमारी जो रास्ते। इन्हीं पांचों कारणों से निश्चित रूप से हमारी वाणी का असंयम हो जाया करता है और हम कुछ भी कर बैठते हैं। एक बार की बात, एक व्यक्ति बहुत अधिक क्रोधित था और गुस्से में जब व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता उपाय अपना गुस्सा निकालने का, गुस्सा पे ज्यादा आ रहा है और इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने वाले से संघर्ष कर सके, तो अब क्या किया जाए। तो घर में जो नौकर होते हैं उनके ऊपर हम अपनी पूरी गुस्सा निकालते हैं। तो इसी प्रकार से वह व्यक्ति भी कई उपाधियों से अपने नौकर को विभूषित करने में लगा था, बुरी बुरी उपाधियां। इसी के दौरान दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो वह नौकर से कहता है कि चल जाबे, देख सके तो आ, यह कौन सा बड़ा आ गया है इस समय। तो वह जाता है नौकर, जब वह दरवाजा खुल करके देखता है तो वहां से बड़े शर्म के साथ और लौट करके आता है और उनसे कहता है कि आपके पिताजी आए हैं। तो वह कहता है कि इस समय वह किस गधे से मिलने आए हैं। तो उसने कहा कि वह आपसे मिलने आए हैं। इस व्यक्ति की वाणी में देखो अपने साथ कैसा व्यवहार कर लिया, बाप को भी गधा बना दिया और स्वयं गधा बन गया। इसलिए क्रोध में व्यक्ति अपना आपा खो रखता है, उसे ध्यान ही नहीं रहता कि मैं स्वयं के साथ कितना बुरा व्यवहार करने जा रहा हूं। इसी प्रकार से लोभ में पड़कर के व्यक्ति जब उसको लोभ दिया जाता है तो वह अदालत में जाकर के झूठ बोलने को मजबूर हो जाता है, और एक एकदम निर्दोष व्यक्ति को जिसका इसको पहले से ही ज्ञात है कि यह व्यक्ति एकदम निर्दोष है और अपनी झूठी गवाही के माध्यम से लोभ में पड़ करके उस व्यक्ति की भी जिंदगी को बर्बाद कर बैठता है। इसी प्रकार से भय आदि में पड़ करके भी व्यक्ति झूठ बोल लेकर या अपनी वाणी का असंयम कर बैठता है। और सबसे अधिक जो हमारी वाणी में असंयम आता है उसमें सबसे बड़ा हाथ है हंसी मजाक का, जो कि हम सभी लोगों ने अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया है। हम सभी लोगों का 24 घंटे में अधिकांश समय इसी में व्यतीत हो जाया करता है और हम यह नहीं समझते कि इसी के दौरान हम कितने जीवों को बड़ी बड़ी ठेसर पहुंचा देते हैं, यहाँ तक कि उसको हमारे माध्यम से और अपने जीवन को भी खो बैठता है। एक बार किसी ने कहा भी है कि रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हांसी। यह पहले से भी लोगों ने कह दिया है कि जब जब भी लड़ाई हुई है तो इसी हंसी और मजाक के कारण। अकबर जो कि बहुत बड़ा बादशाह हुआ है, अकबर हमेशा अपने मंत्री बीरबल से बहुत मजाक करता था और बीरबल भी अपने उन बादशाह से भी कई कदम आगे था। जबरदस्त उत्तर हमेशा बीरबल के द्वारा अकबर को मिला है। तो एक बार अकबर को मजाक की सूझी और अकबर ने बीरबल से कह दिया कि बीरबल आज मैंने एक बहुत अच्छा सपना देखा है। तो बीरबल ने कहा कि सुनाओ क्या देखा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज सपने में देखा कि अपन दोनों घूमने जा रहे हैं और अचानक जंगल में पहुंचते हैं तो दो गड्ढे थे, एक गड्ढे में तुम गिर जाते हो, एक गड्ढे में हम गिर जाते हैं। जिस गड्ढे में हम गिरे थे वह गड्ढा था शक्कर का और तुम जिस गड्ढे में गिरे थे वह था मन का। इस प्रकार से हम दोनों गड्ढे में गिर गए। तो बीरबल ने पूछा और आगे क्या था, जहां पना है? तो उन्होंने कहा बस सपना इतने के बाद मेरी नींद खुल गई। तो बीरबल ने कहा जहां पना है, सपना तो मैं भी देख रहा था, बात क्या है आपकी नींद थोड़ी पहले खुल गई और हमारी आपके थोड़े बाद में। तो मैंने भी देखा कि गड्ढे में तो दोनों गिर गए थे, हमने भी क्रम से देखा, गड्ढे में मैं भी गिरा था और आप भी गड्ढे में गिरे, परंतु जब गड्ढे में से दोनों निकले तो आप मुझे चाटने लगे और मैं आपको चाटने में लग गया। इस प्रकार से इस उत्तर को सुनकर के वह अकबर दंग रह गया, उसको बहुत बड़ा पश्चाताप हो गया कि देखो इस बीरबल ने हमें कैसा उत्तर दे दिया। मुझे कहने के पहले थोड़ा विचार तो करना था कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, देखो भरी सवाल है कैसा शर्मिंदा कर दिया। तो निश्चित रूप से वाणी का असंयम उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा हुआ करता है जो कुछ बोलने के पहले विचार नहीं करते, और जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कहने से पहले थोड़ा विचार कर लिया करते हैं उनको जीवन में कभी कोई विचार नहीं करना पड़ता, और जो कुछ कहने या करने के पहले विचार नहीं करते उनको पूरे जीवन भर विचार ही करते रहना पड़ता है और अपने विचारों के माध्यम से कुछ क्रांति अपने जीवन में उद्घाटित नहीं कर पाते और उनका पूरा जीवन पश्चाताप में निकल जाता है, क्योंकि वाणी का असंयम उनके द्वारा हुआ है और उन्होंने अपने जीवन में हंसी मजाक का सहारा लिया था जिसके फलस्वरूप उनको यह परिणाम भोगने पड़ते हैं। और इसी प्रकार से अंत में आता है कि हमारी जो रास्ते हैं उन्हीं आदतों के कारण भी हम अपनी वाणी का असंयम खो बैठते हैं। निश्चित रूप से जब जब भी हमारी वाणी में असंयम आता है तो हमारी पुरानी आदतें, हमारी जो हैबिट्स हुआ करती हैं, उन्हीं के माध्यम से हम इस प्रकार से संस्कारित हो जाते हैं कि हम गलती पर गलती करते चले जाते हैं। यदि हम चाहें तो अपनी उन्हीं आदतों के द्वारा हम अच्छा व्यवहार भी कर सकते हैं, और यदि हम चाहें तो अपनी उन्हीं बुरी आदतों के द्वारा हम दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं। एक बार की बात, एक व्यक्ति जो कि चूड़ियां बेच करके अपना जीवन यापन करता था और वह एक घोड़ी के ऊपर अपनी चूड़ियों को लाद करके गांव गांव में जा करके वह अपनी चूड़ियों को बेचा करता था, और जब वह अपनी गधी को लेकर के चूड़ियां बेचने निकलता था तो वह अपनी गधी से गधीना कर करके क्या कहता था, वह कहता था चल मेरी माँ, चल मेरी भाभी, चल मेरी बहन, इस प्रकार के उच्चारण वह अपनी गधी के साथ करता था। तो लोगों ने सोचा कि पागल हो गया क्या, जिस प्रकार का बर्ताव गधी के साथ संसार का सबसे निकृष्ट उपेक्षित प्राणी गधा और गधी, जिसके साथ इतना अच्छा व्यवहार, निश्चित रूप से यह व्यक्ति ग्वालियर जाने लायक था, यह धोखे में यह चूड़ियां बेचने आ गया है। तो उनमें से एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि वो पागल हो गया क्या, गधी कहते नहीं मिलता क्या? तो उसने कहा कि भैया तुम जानते हो हमारा काम चूड़ियां बेचने का है, और चूड़ियां जानते हो कौन खरीदता है, चूड़ियां महिला ही खरीदती हैं और उन्हें भाभी बहने और माताएं आदि जो होती हैं वही तो खरीदती हैं। और यदि मैं थोड़ा ही चूक गया तो मेरी ऐसी इमेज बन जाएगी कि कोई भी मेरी चूड़ियां खरीदने नहीं आएगा। तो इसलिए शब्दों के माध्यम से मैं अपनी आदत बनाने में लगा हूं कि मेरे मुख से धोखे में भी कोई अपशब्द ना निकल जाए और हमेशा मेरे मुख से यही बहन भाभी और माता आदि शब्द निकलते रहे, तभी तो मेरा जीवन यापन हो पाएगा। तो निश्चित रूप से इन्हीं पांच कारणों के द्वारा हमारी वाणी का असंयम हुआ करता है और यदि हम चाहें तो उसके ऊपर इन्हीं कारणों से हम संयम भी कर सकते हैं। तो हम सभी लोगों को यह सब सोचना है कि कितने महान पुण्य का फल कि वर्तमान में हमें यह मनुष्य की पर्याय मिली। बंधु किस्मत की बात हम सभी लोगों के पास वर्तमान में मतीय शुद्ध ज्ञान के अलावा हमारे हीन पुण्य के कारण कोई तीसरा ज्ञान नहीं है कि हम इसके बारे में जानें कि पूर्व में हम कहां थे। यदि आपको यह रील दिखा दी जाए तो निश्चित रूप से आपके अंदर सम्यक दर्शन उद्घाटित हुए बना नहीं रहेगा कि कितने आपने विशुद्ध परिणाम किए थे और नरकों और त्रेंच गतियों में अनंतों अनंतों बार जाकर के आपने कितने महान कष्टों को भोगा और आपने बार बार प्रभु से एक ही प्रार्थना की कि भगवान बस एक बार मुझे मनुष्य पर्याय में भेज दो। मैं निश्चित रूप से अपना पूरा का पूरा जीवन आपके भजन में निकाल दूंगा। परंतु हम सभी लोग इतने बेईमान ठहरे और ऐसा कहा भी जाता है कि जब तक यह जीव गर्भ काल में रहता है मनुष्य वहां भी इतनी अधिक वेदनाएं उस गर्भ में 9 महीने तक जीव को होना पड़ती है कि प्रति क्षण वह भगवान से एक ही भावना करता है कि प्रभु मुझे गर्भ से बाहर कर दो, मैं अपना समग्र जीवन तुम्हारी भक्ति में निकाल दूंगा। अब इतनी अधिक पीड़ा हमसे सहन नहीं होती है, ऐसी वेदना तो मैंने कहीं पर नहीं देखी। अब तो बस आप मेरी एक ही प्रार्थना सुन लो कि मुझे इस गर्भ से बाहर कर दो, मैं अपना पूरा का पूरा जीवन तुम्हारी आराधना में निकाल दूंगा और अपना कल्याण कर दूंगा जिसके माध्यम से मुझे कभी इस गर्भ में ना आना पड़े। और यह मनुष्य जन्म लेते ही साथ यह अपना पिछला सब कुछ भूल जाता है कि मैं कहां से च्युत होकर के इस माँ के गर्भ में आया था और गर्भ में भी मैंने 9 महीने तक किस प्रकार से प्रभु का स्मरण किया था और यहाँ पर आकर के वह बेईमान प्राणी जिसने अनंतों भाव इसी बेईमानी के कारण नरकों और त्रेचों में और मनुष्य में भी आया है तो दुख के साथ निकाल दिए और इसी बेईमानी में भी वह प्रभु को भूल जाता है और अपना समग्र जीवन उन्हीं 5 पापों में निकाल देता है क्योंकि उसको याद ही नहीं है कि किन विशुद्ध भावनाओं के कारण मुझे यह जैन कुल मिला और मुझे शरीर के सभी अंग जो कि सुरक्षित हैं सभी अंग मिले और स्वस्थ मिला और ऐसे आचार्य जी जैसे महान गुरुओं का सानिध्य मिला जिनके की माध्यम से पूरे से पूरे संसार का कल्याण हो रहा है। ऐसे महान गुरुओं का सानिध्य मिलना महान जोड़ा है। कहते हैं कि जब 56 प्रकार के व्यंजनों की थाली लगी हुई हमारे सामने आ जाती है तो निश्चित रूप से उसका मूल्य घट ही जाता है और भले ही इसके पहले हम छोटी छोटी वस्तुओं को तरसते रहे हों और हमें याद नहीं रहता और वह व्यंजनों की थाली को भी हम ठुकरा देते हैं। इसी प्रकार से ऐसे महान गुरु मिले जो कि स्वतः कल्याण में लगे हुए हैं। तो हम सभी लोगों को भी इस ओर ध्यान देना है कि कितने पुण्यों का हमने संचय किया था जिसके फलस्वरूप हमें यह पर्याय मिली और यदि पर्याय मिली है तो सबसे बड़ी जो हम अपनी इस जिह्वा इंद्रिय का प्रयोग करते हैं इस वाणी का प्रयोग करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि यदि हम किसी का अच्छा ना कर सकें तो अपनी वाणी के माध्यम से हम शब्दों का दुरुपयोग नहीं करेंगे या किसी के प्रति हम बुरे लक्षणों का प्रयोग नहीं करेंगे जिसके माध्यम से वह व्यक्ति हताहत हो जाए या उसको किसी प्रकार की कोई ठेस या दुख पहुंचे। इतना करने में हम सभी लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, ना तो अच्छा बोलने में हमारे अंदर जो शब्द का भंडार है वह भी उसमें भी किसी प्रकार की कमी आएगी और यदि सामने वाले व्यक्ति को हमारे उन चंद अच्छे शब्दों के साथ माध्यम से उसको प्रसन्नता का अनुभव होता है तो इसमें हमारा कुछ नहीं जाने वाला, यह तो हम बड़ी सहजता और सरलता के साथ कर सकते हैं। तो इसी भावना के साथ हम सभी लोग भी अपनी इस वाणी का सदुपयोग करें और संसार के सभी प्राणियों को अपने शब्दों और अपने वाक्यों के माध्यम से उनको हम प्रफुल्लित करें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर की 108 विद्या सागर जी महाराज की
जय। जो विद्यादि सागर सुधी गुरुदेव तैसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयानी पूजू सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हमेशा की तरह अपने जीवन के विकास के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ बातें आज हमने अभी सीख भी ली हैं। थोड़ी सी देर और हम कुछ बातें सीख लेते हैं। पूरा जीवन भी शायद कम है इस बात के सीखने के लिए कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं। बहुत पहले किसी एक व्यक्ति के घर में एक बहुत पुराना बाजा रखा रहता था। घर के लोग वो बाजा बजाना नहीं जानते थे तो कोने में टिका रखा रहता था, पर चूंकि बहुत पुराना बाजा था, पिता और पिता के जमाने से रखा था, तो किसी का मन उसको हटाने या फेंक देने का भी नहीं होता था। पर जब बाजे से बहुत उपद्रव होने लगा तो फिर सबने एक दिन बहुत तंग आकर के ये निर्णय लिया कि भाई बाजा फेंक देना चाहिए, अब व्यर्थ में रखा हुआ है। अब रात में अगर कोई बिल्ली कूद जाती थी, चूहा कूद जाता था तो बड़ा शोरगुल होता था उस बाजे से। तो ये निर्णय लेकर के एक दिन सुबह सुबह कि कोई और देख भी ना पाए और उस बाजे को बाहर रोड पर घर के लोगों ने फेंक दिया। दोपहर अचानक जब बहुत उस गली के भीतर कोई सुरीली आवाज में बाजा बजा करके गा रहा था तो घर के लोगों ने भी खिड़की से झांक के देखा कि कौन गा रहा है, इतना सुंदर बाजा कौन बजा रहा है। तो देखा कि एक भिखारी जैसा व्यक्ति और बाजा बजा रहा है और गा रहा है। उन लोगों ने बहुत गौर से देखा कि अरे ये बाजा तो अपना ही लग रहा है, और जब पक्का हो गया कि बाजा अपना ही है तो सब लोग भागे भागे नीचे आए और उस भिखारी से कहा कि बाबा ये जो बाजा तुम बजा रहे हो इतना सुंदर, ये तो हमारा बाजा है। तो उस भिखारी ने कहा कि जब आपका इतना सुंदर बाजा था तो आपने आपने उसको फेंका क्यों? अब तो ये लोग बहुत मुश्किल में पड़े। इन्होंने कहा कि बाबा हमसे तो वो बजाते ही नहीं बनता था, पर है हमारा बाजा, हमको वापिस लौटा दो। ये तो उस बाजे को लेकर के बात हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन का बाजा भी ऐसे ही हम जीवन भर ठीक से ना बजा पाए तो आखिरी समय फेंक दें, और जब कोई हमारे ही जीवन के तारों को ठीक ठीक संभाल के और फिर उसी पर संगीत निकाल दे तो हम ही फिर लालायित होंगे कि अरे ये तो हमारा ही जीवन था, हमने इसको व्यर्थ क्यों फेंक दिया। अगर थोड़ा सा इस तरह मरने से पहले जो चीज याद आ जानी चाहिए या मरते वक्त याद आती है वो अगर थोड़ा सा पहले याद आ जाए तो बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। हमारे जीवन के साथ भी शायद यही है कि जब जब भी हम अपनी सांसों को ठीक ठीक कोई रिदिम नहीं दे पाते हैं, ठीक ठीक कोई लय नहीं दे पाते हैं जीवन को, तो हमें अपना जीवन ही बोझ मालूम पड़ने लगता है, और हमें ही नहीं हमारे आसपास भी हमारा जीवन बोझ बन जाता है। हमारे जीवन को अगर हमें बेहतर ढंग से जीना है तो हमें अपनी सांसों के तार फिर से संभालना होंगे, हमें थोड़ा आर्टिस्टिकल अपने भीतर नेचर डेवलप करना पड़ेगा, एक कलाकार हमें अपने भीतर पैदा करना पड़ेगा जो कि इस जीवन के संगीत को पैदा कर सके, इन सांसों के तारों को संभाल सके। हमारे अपने जीवन में भी इसी तरह का संगीत निकल सकता, हमारा अपना व्यक्तित्व भी बहुत रोशन हो सकता है, लेकिन अपने व्यक्तित्व में कितनी चीजें हैं जो हमारे व्यक्तित्व को संभालती हैं इस पर हमने शायद कभी विचार नहीं किया। हम सोचते हैं कि हमारा रंग रूप अच्छा होगा, हमारी लोकप्रियता ज्यादा होगी, हम बुद्धिमान होंगे, हमारा शरीर बहुत बलवान होगा तो शायद हमारी पर्सनालिटी हमारा व्यक्तित्व अच्छा माना जाएगा। ठीक है किसी का रूप रंग बहुत अच्छा हो, किसी में बुद्धिमत्ता भी हो और किसी की लोकप्रियता भी बहुत अधिक हो और यहां तक कि उसका शरीर भी बहुत बलवान हो, क्या कुल इतनी ही चीजें हैं उस व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाने के लिए? नहीं, शायद ये सब चीजें भी बहुत पीछे छूट जाती हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्मित करने वाली ये चीजें नहीं है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में इन सब चीजों का संतुलन उसके व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाता है। अगर सिर्फ रंग रूप है, अगर सिर्फ बुद्धिमत्ता है, या कि शरीर की प्रबलता है, या कि सिर्फ उसने झूठी लोकप्रियता हासिल भी कर ली है, ये सब चीजें इंडिविजुअल अगर हैं, अलग अलग अगर हैं, और अगर ये अनबैलेंस हैं, तब भी शायद हमारा जीवन विशिष्ट नहीं कहलाएगा, बेहतर नहीं कहलाएगा। हमारी बुद्धिमत्ता भी हमें पीड़ा दे जाती है कई बार, हमारा अच्छा रूप रंग भी हमें पीड़ा दे जाता है कई बार, हमारी बहुत अधिक लोकप्रियता जो घटिया किस्म की लोकप्रियता जिसको जनरंजन कहते हैं वो भी हमारे अहित में कारण बन जाती है, क्योंकि हम उस योग्य ना होकर के भी जब उस चीज को दूसरों से प्राप्त करते हैं तो हम अपनी योग्यता नहीं बढ़ाते हैं बल्कि संतुष्ट हो जाते हैं कि अब तो जय जयकार होने लगी, इतना ही तो चाहिए था और क्या करना, मेरा व्यक्तित्व अच्छा हो गया। कहते हैं इससे हमारे जीवन का परिष्कार नहीं होगा, और अकेले शरीर के दृढ़ होने से किसी का व्यक्तित्व ऊंचा नहीं होता, इन सब के बीच एक संतुलन आवश्यक है। बहुत पहले किसी ने रूप रंग को बहुत महत्व देने की बात कही थी और गुणवत्ता को भुला दिया था, तो एक बहुत छोटी सी घटना मैं आपसे कहूं। शायद किसी राजा ने कहा था कि रूप रंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो मंत्री ने कहा कि नहीं, रूप रंग का उतना महत्व नहीं है, कभी बताऊंगा मैं इस बात को। और जब गर्मी के दिन में राजा ने पानी मांगा था तो उसने बहुत सुंदर सोने के घड़े में से पानी लाकर के राजा को दिया, तो राजा ने कहा कि इतना गर्म। उसने कहा, राजन जिसका रूप रंग इतना सुंदर है वो सोने का घड़ा, उसमें से मैं आपको पानी लेके आया हूं, अब गर्म अरम वाली बात तो हम नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो ठंडा पानी पिलाओ। जब ठंडा पानी लाया गया तो उन्होंने कहा ये किस घड़े से लाए? तो घड़ा दिखाया गया, वो तो बिल्कुल एकदम काला सा हो गया था और उसमें कोई सौंदर्य नहीं था, लेकिन गुणवत्ता उसमें फिर भी बहुत थी, वो शीतल जल दे रहा था। सवाल सिर्फ इतना है कि हम अपने व्यक्तित्व में क्या देखते हैं? हम अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए अपने रूप रंग को बेहतर बनाने की चेष्टा करते हैं। दूसरे का रूप रंग मिटा करके अपना रूप रंग बनाना, ये आज की प्रवृत्ति चल गई है और हमारे सभी लोगों के अंदर ये धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। कितने कॉस्मेटिक्स, कितने सौंदर्य प्रसाधन की चीजें, जिनके पीछे कितनों कितनों के प्राण, कितनों कितनों का जीवन नष्ट किया गया है, इसके बावजूद भी सिर्फ हम अपने छोटे से सौंदर्य के लिए, और उसमें बहुत अधिक संख्या इंदौर और भोपाल के आंकड़े हैं कि कॉस्मेटिक्स 95% जेंट्स के द्वारा कंज्यूम होता है। 95%। एक छोटी सी 12 बरस की बिटिया भोपाल के अंदर एक शॉप पर पहुंचती है और क्या मांगती है, उस क्रीम का मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो 5 ग्राम क्रीम जो है वो 95 रुपीस की मिलती है। वो दुकानदार कह रहा है कि बिटिया तेरे लायक नहीं है। वो कहती, अंकल जब मेरे पास अपने जेब खर्च में से 95 रुपए हो जाएंगे जरूर तेरे यहां से लेकर के जाऊंगी। वो उस 5 ग्राम सिर्फ क्रीम के लिए 95 रुपया, और उस क्रीम में ये भी हम नहीं पता करते हैं कि क्या चीज पड़ी है, किसकी जान ले ली गई है। हम अपने व्यक्तित्व को निखार के लिए शायद ऐसी चीजें भी करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। नहीं भाई, हमें थोड़ा सा सोचना होगा, हमारा व्यक्तित्व बेहतर हो, हमारा जीवन बेहतर हो, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन किसी दूसरे का जीवन नष्ट हो ये तो बुरी चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है। तब हमने पहली बात आज सीख ली। मैं बहुत थोड़े में अपनी बात कहूँगा, बस थोड़ी 5-7 मिनट में सोचता हूँ कि अपनी बात पूरी कहूँ। अपन काफ़ी देर हो गई है अपन को। मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारे अपने जीवन में हम अपने व्यक्तित्व को तो ऊंचा उठाना चाहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान अपने आसपास होने वाली हिंसा के प्रति जरा भी चिंतित नहीं है। ये हमने पहली बात सीखी कि हमें अपना व्यक्तित्व तो अच्छा बनाना है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बनाने में दूसरे के प्राण अगर जाते हैं तो हमें अपने को थोड़ा सा समेट लेना है। दूसरी बात, हमें दूसरे के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरे का व्यक्तित्व भी हमें प्रेरणा देता है, हमारे व्यक्तित्व को संतुलित और बेहतर बनाता है, लेकिन अंधानुकरण से बचना चाहिए। दोनों बातें एक साथ चलती हैं। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ऊंचा मकान बना के, बहुत अच्छे फर्नीचर के साथ, गीजर और टेलीविजन और बहुत सारी चीजें जो कि आज के समय में अनिवार्य जैसी मालूम पड़ती हैं, जबकि वे अनिवार्य नहीं है, आवश्यक भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनको रखता है। और हम देखते हैं कि अरे वाह, ये चीजें मेरे पास होंगी तो शायद इसकी तरह मेरा व्यक्तित्व भी ऊंचा माना जाएगा। मैं ऐसा सोच करके अंधानुकरण करता हूं, मुझे उन चीजों की आवश्यकता नहीं भी है, फिर भी मैं उन चीजों को कलेक्ट करता हूं, उन चीजों का संग्रह करता हूं, उन चीजों की आवश्यकता महसूस करने लगता हूं। कहते नहीं, दूसरे के व्यक्तित्व से प्रेरणा तो लेना, लेकिन दूसरे का अंधानुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान महावीर स्वामी भी हमारे बीच किस तरह से जिए हैं, हमारे महापुरुष हमारे बीच किस तरह जिए हैं। भगवान महावीर स्वामी ने तो सारा कुछ छोड़ करके उस सच्चाई के रास्ते को अपनाया, गांधी बहुत पहले नहीं हुए, अभी हुए हैं और थोड़े से में उन्होंने अपने जीवन को यापन किया। कहते हैं कि वे अपने आश्रम में जब लोग पेड़ से दातून तोड़ करके दातून करते थे तो दातून में से थोड़ा सा पोर्शन ही घिसने और करने के काम आता है दांत साफ करने के, तो वे कहा करते थे आश्रम वासियों से कि जितना इस भाग से तुमने दांत घिसे हैं उतना काट के अलग कर दो, बाकी पूरी दातून क्यों फेंकते हो, वो कल फिर काम आएगी। अरे अगर उन्होंने इस तरह के अपने जीवन को चलाया, जब वो, मैंने आपको शायद वो घटना पहले भी कही थी, ऐसी बहुत सारी उनके जीवन की घटनाएं हैं, एक पिन भी वो अपना संभाल के रखते थे, जब उनकी नातिन मनु उनके लिए मिट्टी की पट्टी रखती थी तो उसमें एक विशेष प्रकार की पिन का उपयोग करती थी, वो एक दिन पिन नहीं मिली तो उसने नई पिन ला करके जब बापू को पट्टी में लगाई तो बापू ने कहा ये ना लगाऊंगा, वो पुरानी वाली खोज के लाओ। उसने कहा वो कहां से लाऊं, तो पहले खोजो वो तुमने क्यों खराब की, क्यों उसको खो दिया। बा मुश्किल कचरे के ढेर में जब वो मिल गई तब बापू ने वो अपनी पट्टी उसी पुरानी पिन से लगाई। बहुत दूर न जाकर के मैं आपको 1993 की घटना बताऊं, यशपाल जैन आज भी उस पीढ़ी के हैं जो गांधी जी के समय की पीढ़ी है। दिल्ली में वे आए थे वहां से एक प्रोग्राम में और वहां उनका बनियान छूट गया और वे दिल्ली पहुंच गए। वहां पर आयोजकों को उन्होंने कहा कि मेरा बनियान आपके यहां छूट गया है, मिले तो मुझे वापस भेजिएगा। यहां के आयोजक ढूंढने में लगे, बनियान अंततः नहीं मिला। बनियान के बराबर का कपड़ा जब उनको भेजा गया तो उन्होंने कहा कि ये स्वीकार ना कर पाऊंगा, अब एक ही बनियान से काम निकालूंगा, जब ये भी फट जाएगी तब दो एक साथ लूंगा, क्योंकि वो जो एक थी गुम गई है, वह मेरे उतने समय तक काम देती जब तक मेरे पास ये बनियान है वो काम देती है, इसलिए मैं तब तक तो दूसरी नहीं लूंगा। बताइएगा, ऐसे लोग आज भी हैं। ये है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व इससे नहीं चमकता है कि मेरे पास कितनी चीजें हैं, मेरी गुणवत्ता क्या है, इससे व्यक्तित्व चमकता है। हम भी अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम अंधानुकरण क्यों कर रहे हैं कि लोगों के पास इतना इतना सामान है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं इसलिए वे बढ़िया हैं। अरे भाई, बढ़िया व्यक्ति के पास बढ़िया चीजें रहें ये तो ठीक है, लेकिन बढ़िया चीजें रहने से कोई बढ़िया हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए ऐसे व्यक्तित्व से जिसका वास्तविक में व्यक्तित्व बेहतर था, उससे हम प्रेरणा लें। बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे भीतर कुछ योग्यताएं हैं और कुछ हम अयोग्यताएं भी लेकर के चलते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरी तरह अयोग्य ही हो, या कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि पूरी तरह योग्य ही हो। हमारे भीतर जो योग्यताएं हैं उनको लेकर के हम अहंकार न करें। अहंकार करते हैं तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और अगर हम अपनी अयोग्यता को लेकर के दीनहीन होकर के बैठ जाते हैं तो इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बोथ आर द कॉम्प्लेक्सेस, दोनों ही ग्रंथियां हैं और ये आज बहुत देखने में आती हैं। और इसके चलते होता ये है कि अगर हम योग्य हैं तो अहंकार कर लेते हैं और दूसरे की योग्यता को देख भी नहीं पाते, अपनी ही योग्यता के अहंकार में दूसरे की योग्यता को ढांकने की कोशिश करते हैं। और जब जब हम अपनी योग्यता को ना देखकर अपनी अयोग्यता को देखकर के दीनहीन हो जाते हैं तब हम दूसरे की योग्यता को देखकर उससे ईर्ष्या करने लगते। कोई व्यक्ति अगर दूसरे से ईर्ष्या करे तो समझ लेना कि वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, उसके भीतर कहीं उस चीज की अयोग्यता उसे खाए जाती है, इसलिए दूसरे की योग्यता उसको तकलीफ दे रही। और जब दूसरे की योग्यता दिखाई ना पड़े तो समझना कि उसे अपनी योग्यता का अहंकार हो गया है जिसकी वजह से उसे दिखाई नहीं पड़ती है। भैया, नाटक में विदूषक भी होता है, कॉमेडियन भी होता है, और उसी नाटक में कोई प्रिंस भी होता है, उसी नाटक में कोई राजा भी होता है, सभी होते हैं। राजा का पार्ट करने वाला राजा है वो विदूषक से बड़ा नहीं है, और विदूषक का पार्ट करने वाला विदूषक है वो हंसवा करके और अपने उस पार्ट को गौरवान्वित करता है, वो राजा से कंपेयर करे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। झाड़ू लगाने वाला सुबह से अगर झाड़ू ना लगाए तो हमारा रोड से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए झाड़ू लगाने वाले का काम उसकी जगह एकदम किसी राजा से भी ज्यादा बड़ा काम। इसी तरह मैं भी विचार करूं कि अगर मेरा अपना व्यक्तित्व जिस दिशा में जा रहा है, मेरे पास कौन सी योग्यताएं हैं, मैं उनको देखूं, अपनी योग्यताओं को बढ़ाऊं, दूसरे को अयोग्य ना साबित करूं। अक्सर होता यही है कि अपने ज्ञान को हासिल करके हम दूसरे को अज्ञानी साबित करने के लिए हासिल करते हैं, अपने को ज्यादा पैसे वाला बना के दूसरे को गरीब साबित करने की कोशिश करते हैं। आज यही चीज बहुत तेजी से हमारे देखने में आती है। हमें अपनी योग्यता पहचान के ना उसका अहंकार करना है, ना अपनी अयोग्यता को पहचान करके उस दीनहीन होना, बल्कि अपनी योग्यता को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और आखिरी बात मुझे आपसे कहनी है कि हमारे जीवन में हमने जो पाया है वो हमारी अपनी चॉइस है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने जो भी पाया है, हमने अगर खराब शरीर पाया है वो हमारी चॉइस रहा होगा, वर्तमान का चुनाव नहीं है। कभी हमने पहले किसी जीवन में उसके लायक ही कार्य किया होगा, इसलिए हमें वही मिला। ये बात अलग है कि हमारा चुनाव कुछ और होता है और हमें चीजें कुछ और मिल जाती हैं, लेकिन जो भी मिलता है वो हमारा ही अपना चॉइस होती, वही हमारे अपने व्यक्तित्व का चुनाव होता है। सबने पढ़ा होगा वो महाभारत की घटना, जबकि युद्ध तय हो चुका था, श्री कृष्ण की तमाम कोशिशों के बावजूद भी दुर्योधन मानने को तैयार नहीं थे और युद्ध का संधि प्रस्ताव लेकर के भी श्री कृष्ण जा चुके थे और इतनी धृष्टता उनके साथ की गई थी कि नारायण को भी कैद करने के लिए दुर्योधन ने प्रयत्न किया था, पर वे असफल ही रहे थे। और अंततः क्या हुआ, जब युद्ध होने को है तो सब अपने अपने मित्रों को अपनी तरफ से लड़ने के लिए इकट्ठा कर रहे थे। दुर्योधन को भी ध्यान में आया कि मदद लेनी चाहिए श्री कृष्ण से, अर्जुन को भी ध्यान में आया कि मदद लेनी चाहिए श्री कृष्ण से, और दोनों जन पहुंचे थे। दुर्योधन पहले पहुंचे लेकिन सिर के पास जाके बैठ गए थे, और अर्जुन बाद को पहुंचे, श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए थे। श्री कृष्ण उस समय विश्राम कर रहे थे। सारी घटना बहुत स्पष्ट है, सबके मन में यही चीज है। और अगर अपन देखें तो दोनों की चॉइस जो थी, निर्णय उसी समय हार और जीत का हो गया था। जो नारायण के सिर पर बैठा हुआ है और जो नारायण के पैर में बैठा हुआ है, उसकी चॉइस से मालूम पड़ रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और यही बात जो है उस समय निर्धारित हो गई थी जब संजय ने गीता की शुरुआत में वर्णन करते हुए लिखा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे माम काहा पांडवाहा किम कुर्वती युयुत्सु। युद्ध से प्रेरित होकर के और धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं, मुझे बताओ संजय। धृतराष्ट्र ने वही निर्णय दे दिया था कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। हारता हमेशा हमारा अपना मोह है, हमारी अपनी अज्ञानता है। माम काहा पांडव पुत्र, पांडु के पुत्र अलग और मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, सभी पुत्र उन्हीं के थे, लेकिन दोनों में जो मोह की वजह से विभाजन था वही उनकी च्वाइस उसी समय निर्धारित हो गया था कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। हम संसार में हार रहे हैं, हमारी अपनी चॉइस है। हम संसार में बुराइयों से घिरे हैं, हमारी अपनी चॉइस है। ईमानदार के चारों तरफ ईमानदारी इकट्ठी होती है भैया, बेईमान के चारों तरफ बेईमानी इकट्ठी होती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम देखें अपने चारों तरफ कि हमारे पास क्या इकट्ठा हुआ है, जो इकट्ठा हुआ है वो हमारी अपनी चॉइस है, इसमें कोई शक नहीं। जो हमें मिला है, जो हमने अरेंज किया है, जो हमने गेन किया है, वो सब हमारी चॉइस है। फिर हम किसके पास जाके गिला शिकवा और शिकायत करना चाहते हैं कि हमें ये नहीं मिला हमें वो नहीं मिला। हमने जो चाहा है वो हमें मिला है, हमने ऐसा शरीर चाहा हमें वैसा शरीर मिला। चाहने से मेरा आशय ये है कि मैंने जिस चीज के लिए अफोर्ड किया है, मैंने जिस तरह का प्रयत्न किया है मुझे वो चीज मिली है, मैंने जैसे परिणाम अपने किए हैं वो परिणामों का फल मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो मेरी अपनी चॉइस पर निर्भर करता है। और जब मांगने की बात आई थी तो सबसे पहले श्री कृष्ण जब उठे थे तो दृष्टि श्री कृष्ण की अर्जुन पर गई थी, जो चरणों में बैठा है उसी पर दृष्टि जाती है, जो विनम्र है वही अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा लेता है और उसी तरफ सबकी दृष्टि जाती है। तो कोई कोई बहुत अधिक अस्वाभाविक बात नहीं थी कि श्री कृष्ण की दृष्टि अर्जुन पर गई थी, क्योंकि अर्जुन बहुत विनम्र होकर के आए थे। और पहला मौका जब अर्जुन को मिला था तो अहंकारी जो दुर्योधन थे उनको बहुत कष्ट हुआ था कि अरे चूक गए, हमें ऐसा मालूम होता कि चरणों में बैठने से पहले बार दृष्टि में देखते तो हम बैठ जाते चरणों में। अहंकारी के साथ मुश्किल है कि अगर उसको कुछ श्रद्धा हो तो वो कहता हो जाएंगे विनम्र, क्या फर्क पड़ता है, आई एम नथिंग। कल तक कहते थे आई एम समथिंग, अब कहेंगे आई एम नथिंग, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बोथ आर द मैकेनिज्म ऑफ माइंड, दोनों ही मस्तिष्क की उपज है। कल तक मैं कहता था कि मैं सब कुछ हूं, आज मैं कहने लगा मैं कुछ नहीं हूं क्योंकि मेरा स्वार्थ सदरा है इसलिए मैं कुछ नहीं। ऐसा भी हम कई बार कर देते हैं। एक वो चीज होती है जो हमारी विनय होती है और हम कहते कि मैं बहुत अकिंचन हूं, एक वो स्थिति उसको टच नहीं कर रहा हूं। अभी तो अपन अपने भीतर की जो कमजोरी है उसको देख रहे हैं, वो तो क्वालिटी है। जब हम भगवान के सामने और अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, वो एक क्षण अलग है। लेकिन यहां तो दुर्योधन मन ही मन सोचता है कि अरे पहले आ जाते वहां बैठ जाते, अपन को क्या फर्क पड़ने वाला। लेकिन जब अर्जुन ने मांगा, क्योंकि दो ही चीजें श्री कृष्ण के पास थी, 11 अक्षौणी सेना थी, अक्षौणी सेना बहुत बड़ी होती है जिसमें 100,000 तो पदाती होते हैं और कितने सारे घोड़े और कितने हाथी होते हैं। वो 11 अक्षौणी सेना श्री कृष्ण के पास थी, उन्होंने कहा था कि दो में से कोई एक चुनना पड़ेगा, या कि निहत्था मैं और या फिर मेरी 11 अक्षौणी सेना, बोलो अर्जुन क्या चुनते हो। तब छटपटाए थे दुर्योधन कि मामला गड़बड़ हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन 11 अक्षौणी सेना चुन ले, इस अकेले श्री कृष्ण से क्या होने वाला। तो मन ही मन उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। पर अर्जुन भी ऐसे निकले, उन्होंने कहा भगवान अगर यही चुनने के लिए दो चीजें हैं तो चुनता हूं मैं, आपको ही चुनता हूं आप मेरी तरफ से। और निहत्ते ही सही, निर्णय तो वही हो गया था। और तब दुर्योधन हंसे थे बहुत ठहाका लगा के कि हम तो सोच रहे थे कि सपनी मामा ने इनको हराया, ये तो अपनी गैर बुद्धिमानी से ही हारे। अब इतने तो सब इन्हीं के हाथ में है, तो जो चुनने वो चुन लेते, पहले नंबर टास इन्हीं के जुम्मे हुआ था। लेकिन ये जन्म के बुद्धू निकले, हमने इनको उस समय ठगा था, आज तो ये खुद ही ठगे गए। उस समय दुर्योधन भूल गया कि कौन ठगाया गया है। जब हमारे सामने भी संसार और परमात्मा चुनने को आता है तब हम संसार चुन करके अपने को ये मानते हैं कि हम ठगाए नहीं गए हैं, हमने ठीक चीज चुनी है। लेकिन अगर कोई वास्तव में हमारे अंतरंग में कोई बैठा हुआ हमें विवेक दे देवे तो वो बताएगा कि तुमने चूक कर दी है संसार और परमात्मा में से, चुनने लायक तो परमात्मा ही था, नारायण ही था। और वो 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन लेकर के गए थे और अंततः हारे भी थे। वो 11 अक्षौणी सेना रही होगी उस समय युद्ध के समय, आज तो नहीं है ना, आज श्री कृष्ण है, मैं कहता हूं दोनों आज है, दोनों हमारे सामने आज है। 11 अक्षौणी सेना भी हमारे पास है और श्री कृष्ण भी हमारे पास है, हमें फिर एक बार चुनना है। हम किसे चुनते हैं उसी से हमारे व्यक्तित्व का निर्णय हो जाएगा। वो 11 अक्षौणी सेना और कुछ नहीं है, हमारी पांचों इंद्रियां, पांचों इंद्री के विषय और एक मन, यही 11 चीजें 11 अक्षौणी सेना है। इन्हीं के दम पर और हम जीतने के लिए संसार में निकले हैं। पांच इंद्री और उनके विषय और मन, ये कई कई बार हमें मिले हैं, कई कई बार हमने चुन लिए हैं, लेकिन इनके चुनने से हम कभी नहीं जीते हैं। हमारे भीतर बैठे हुए श्री कृष्ण रूपी विवेक अगर एक बार हमने अपने भीतर चुन लिया होता, वो जो विवेक है वो आंख हमें प्राप्त हो जाती कि क्या चुनना है, ये विवेक की आंख हमारे पास में हो तो हमारा जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बात को आपको ठीक ठीक कह पाया हूँ। हम सबको अपने व्यक्तित्व को बहुत बेहतर बनाना है, हमारे पास उपाय भी हैं, बस इतना ही है कि उन उपायों को हमें अपने जीवन में जब समय मिले तब लागू करने की आवश्यकता है। मैं भावना भाता हूँ भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे कि हमें जो साधन मिले हैं, जो भी उपाय हमें मिले हैं, उन उपायों को हम अपने जीवन में जितने जल्दी बने उतने जल्दी अंगीकार करके अपने जीवन को परिष्कृत करें, अपने जीवन का कल्याण करें। प्राणी मात्र के लिए हमारा जीवन कल्याणकारी हो और स्वयं का भी हम कल्याण करें, इसी भावना के साथ मेरे साथ नमोकार करें।
Come on.